तारीख 4 मई दिन सोमवार, कार्यक्रम नमस्कार भारत। नाइजीरिया में चरमपंथी गुट बोको हराम के कब्जे से छुड़ाई गई महिलाओं की है दर्द भरी दास्ता, कैसे चरमपंथियों ने ली पत्थरों से मार कर जान। पंजाब के मोगा में किशोरी की मौत के 4 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने लिया 30 लाख का मुआवजा। भूकंप ग्रस्त नेपाल के अस्पतालों का हाल,
उस दिन करीब 11:56 में जो अर्थक्वेक हुआ ना, उस समय में इस हॉस्पिटल में टोटल 300 पेशेंट शायद होगा।
खबरें होंगी और भी, अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। नाइजीरिया में सेना ने दावा किया है कि पिछले सप्ताह से अब तक उसने बोको हराम के चंगुल से 700 बंधकों को छुड़ा लिया है। छुड़ाई गई महिलाओं के मुताबिक उन्हें छुड़ाने की कार्रवाई के दौरान जिहादियों ने कई बंधकों की हत्या भी कर दी। वहीं कई स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी सेनाएं कई निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रही हैं। सेना ने इन आरोपों का खंडन किया है। नेपाल में राहत कार्यों में मदद देने के लिए अमरीकी सेना के 4 हेलीकॉप्टर पहुंच गए हैं। इस बीच भूकंप के बाद अब विशेषज्ञों ने नेपाल में महामारियों के फैलने की आशंका जताई है। 25 अप्रैल को 7.9 तीव्रता का भूकंप आने के बाद से नेपाल में राहत कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं। भारत के नागालैंड राज्य में चरमपंथियों ने सेना के 8 जवानों को मार डाला है। मारे गए सैनिकों में 7 असम राइफल के जवान और एक प्रांतीय सेना का जवान था। यह हमला गुवाहाटी से 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित मोन जिले में हुआ। समाचार एजेंसियों के मुताबिक सेना को ले जा रहे 2 ट्रकों पर चरमपंथियों ने स्वचालित हथियारों से घात लगाकर हमला किया। पंजाब के मोगा में कथित छेड़छाड़ की शिकार किशोरी की मौत पर कांग्रेस ने आज मोगा बंद का ऐलान किया है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में आज सुनवाई होगी। कल इस घटना के 4 दिन बाद किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके परिवार वालों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन रविवार को मोगा में परिवार वालों, प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें अंतिम संस्कार को लेकर सहमति बनी। इटली के तटरक्षक अधिकारियों का कहना है कि भूमध्य सागर पार कर यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे करीब 6,000 अवैध प्रवासियों को जिंदा बचा लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 48 घंटों के दौरान इन लोगों को बचाया गया। बचाए गए एक अवैध अप्रवासी की दास्तां उनके शब्दों में। आप देखते नहीं कि हम कितनी तकलीफ में हैं? देखिए हमारी तरफ, हम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, हमें बेहद तकलीफ है। क्या आप लोगों को हमारा दुख दिखाई नहीं देता? आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन के अदन शहर में सेना और हूती विद्रोहियों के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। इस बीच खबरों के मुताबिक अरब गठबंधन की सेनाएं अदन के करीब पहुंच चुकी हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व में इस गठबंधन की सेनाओं की 20 टुकड़ियां हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए पहुंच गई हैं। हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले के बाद यह पहला मौका है जब जमीनी हमले के लिए ये सेनाएं यमन पहुंची हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में प्रभात पांडे से सुना, नाइजीरिया में चरमपंथी गुट बोको हराम के कब्जे से छुड़ाई गई महिलाओं ने बताया है कि चरमपंथियों ने कई बंधकों की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। इन महिलाओं के मुताबिक सेना जब बोको हराम के चंगुल से उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंची, करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी, तब चरमपंथियों ने पुरुषों और किशोर लड़कों की हत्याएं की। इन औरतों ने बताया कि चरमपंथियों ने कई महिलाओं के साथ जबरन शादी के लिए भी उन्हें मजबूर किया। रिहाई के एक दिन बाद बंधक महिलाओं ने मीडिया को बताया कि लगभग 300 बंधक औरतों और लड़कियों को साबिसा के जंगलों से बचाकर एक सरकारी कैंप में लाया गया है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
नाइजीरिया की सेना का कहना है कि उसने पिछले हफ्ते लगभग 700 से ज्यादा लोगों को बचाया है। आसमा ओमरू बताती हैं कि उन्हें कैसे बोको हराम के चंगुल से निकाला गया। जब सेना के जेट निकले तो हमने गोलियों की आवाजें सुनी। बोको हराम के लड़ाकों ने कहा कि हम सब एक कतार में उनके आगे खड़े हो जाएं ताकि हम एक दीवार बनकर उन्हें बचा सकें। हमने मना कर दिया। हमारे चारों ओर गोलियां बरसने लगीं। वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। तभी सेना के जवान आए। जवानों को उस समय ये पता ही नहीं चला कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। हम में से कुछ ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उन्होंने हमें इकट्ठा होने को कहा और वहां से जंगल के रास्ते निकाल लाए और खुद बोको हराम के लड़ाकों के पीछे चल दिए। ये थे आसमा के शब्द। जवानों ने 275 महिलाओं और बच्चों को बाहर निकाला और माल कोही शिविर में ले गए। अधिकारियों का कहना है कि इनमें 61 महिलाएं और 214 बच्चे हैं। 27 साल की लामी मूसा बताती हैं कि उन्हें किस तरह से बंधक बनाया गया था। हम उस वक्त बाजार में थे जब बोको हराम के लोग आए और मुझे खींचा और मेरे पति से भिड़ गए। बाद में उन्होंने मेरे पति को मार दिया और मुझे अपने साथ ले गए ताकि मैं उनके किसी कमांडर से निकाह कर सकूं। जब उन्हें मालूम चला कि मैं गर्भवती हूं तो उन्होंने कहा कि बच्चा होने के बाद कमांडर से निकाह होगा। रात में मैंने बच्चे को जन्म दिया और सुबह सेना ने मुझे बचा लिया। चरमपंथी गुट बोको हराम के कब्जे से छुड़ाई गई एक बंधक महिला ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसकी आंखों के सामने उसके पति की गला काटकर हत्या कर दी गई और उससे पहले उसके 3 बच्चों को अलग कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि बोको हराम के सदस्य बंधकों को दिन में सिर्फ 1 दफा खाना देते थे जिनमें मक्के के सूखे दाने होते थे। बोको हराम से बचाई गई महिलाओं को सेना के नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट को सौंप दिया गया है। पापोला आबाद 23 ब्रिगेड के कमांडर हैं। हमने 275 महिलाओं और बच्चों को सौंप दिया है। मुझे उम्मीद है कि उनकी अब बेहतर देखभाल होगी। पापोला आबा के शब्द। सेना ने दावा किया है कि बोको हराम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसने पिछले सप्ताह 700 बंधकों को आजाद कराया।
नाइजीरिया में चरमपंथी गुट बोको हराम के कब्जे से छुड़ाई गई महिलाओं की दास्तान। आइए और रुख करते हैं भारत का। पंजाब के मोगा में कथित छेड़छाड़ की शिकार किशोरी की मौत के 4 दिन बाद कल देर रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था और शव शवगृह में ही रखा हुआ था, लेकिन कल मोगा में परिवार वालों, प्रशासन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें अंतिम संस्कार को लेकर सहमति बनी। साथ ही मृतक लड़की के पिता सुखदेव ने सरकारी मुआवजे को स्वीकार कर लिया जिसकी राशि 30 लाख है।
मैं आपकी बेटी नू आपके घर ले जाना, मैं संस्कार करना, चुप बोलना नहीं। मैनू किसे अफसर ने, किसे मेरे प्यार दोस्त ने, किसे ने मैनू धमकी नहीं दिती। मैनू जो मेरी सरकार ने देता मैनू कबूल है।
मोगा के जिला आयुक्त परमिंदर सिंह गिल ने कहा,
20 लाख हमने दिया है परिवार को और 4 लाख दिया है हमने बच्चे की पढ़ाई के लिए और 6 लाख दे रही है नेशनल कमीशन SCBC।
ये थे मोगा के जिला आयुक्त परमिंदर सिंह गिल। इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और 2 क्लीनर शामिल हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने मोगा में बंद का आयोजन किया है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने बात की अमृतसर में स्थानीय पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन से।
जो मांगे उन्होंने कही थी, जिसके लिए वो कह रहे थे कि संस्कार तभी होगा या पोस्टमार्टम होगा, उन मांगों का आज उन्होंने जिक्र नहीं किया। वो उनकी मांग थी कि ऑर्बिट एविएशन के मालिक के ऊपर मुकदमा हो और ऑर्बिट एविएशन बसेस के लाइसेंस कैंसिल हो, लेकिन आज उन्होंने ये 2 बातें नहीं कही। एक 9 मेंबरी कमेटी बन गई थी सबको हल करने के लिए, लेकिन जब ADGP आए और बाकी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई तो सुखदेव सिंह जी ने ये कहा कि वो जो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन उनको दी है वो लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बिना किसी दबाव से ये बात मानी और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये था कि मेरी बेटी के कातिलों को सजा मिले, दोषी पकड़े जाएं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि उनके बेटे ने शनाख्त कर दी है उन लोगों की, अक्यूज की, और उन्होंने मीडिया को ये कहा कि उन्हें परेशान ना किया जाए और और भी बाकी सारे सवालों से वो बचे कहने से।
रॉबिन साहब, इसको लेकर के जो कंपेंसेशन बढ़ा करके दिया गया और जो ये सहमति हुई है लड़की के पिता के बीच में और सरकार के बीच में जो कुछ भी है, इसको लेकर के राजनीतिक दलों ने भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी और इसको रिश्वत के रूप में कहा गया है।
ये अनफॉर्चुनेटली वो टाइमिंग पे ये सब कुछ हुआ जब अकाली सरकार ऑलरेडी घिरी हुई थी फार्मर्स वाले मसले में, पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी एक कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रही थी, उन्हें मिला। तो और इस मुद्दे में जब ये इस तरह की कंपनसेशन दी गई तो जो कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा हैं, स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि ये एक ब्राइब है। जैसे दुबई में वो बोलते हैं कि ब्लड मनी दी जाती है, उसी तरह ये इस तरह का वो अकाली सरकार कुछ काम कर रही है।
ये तो सरासर ब्राइबरी है, दिस इज एक्चुअली मर्डर ऑफ जस्टिस इन पंजाब। इसका मतलब तो ये हो गया कि अमीर आदमी, ताकतवर आदमी कोई भी गलत काम करेंगे, क्राइम करेंगे, कत्ल करेंगे, रेप करेंगे, उसके बाद उनकी गरीब लोगों की गुर्बत का फायदा उठा के उनको पैसे से खरीद लेंगे। ऐसा तो मैंने अरब कंट्रीज में लॉ सुना था, इट्स कॉल्ड ब्लड मनी।
जब इसके बारे में जब हमने अकाली दल से बात की, जो सीएम प्रकाश सिंह बादल के मीडिया एडवाइजर हैं हरचरण सिंह बैंस, उनका ये कहना था कि ये जो पैसा है ये सरकार ने नहीं दिया है, ये ऑर्बिट एविएशन ने दिया है।
ये पैसे सरकार नहीं दे रही है, ये पैसे ऑर्बिट कंपनी दे रही है और ऑर्बिट कंपनी ने 24 लाख का जो चेक है वो पंजाब रेड क्रॉस ने जमा करवा दिया है। चारों के चारों एक्यूज इस वक्त जेल में हैं और वो विद इन 24 आवर्स उनको पकड़ लिया गया था।
लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग भी इसमें कार्यरत थे, वो भी इसके खिलाफ चल रहे थे, उन्होंने तो यहाँ तक चले गए। फुल्का जी जो उनके आपके लीडर हैं और लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने राष्ट्रपति जी को एक लेटर दिया है, विनती की है कि पंजाब सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है और संवैधानिक ढंग से भी वो काम नहीं कर रही, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए।
पंजाब के मोगा में किशोरी की मौत के 4 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार, पिता ने सरकारी मुआवजा कबूल किया। अब बात भूकंप प्रभावित नेपाल की। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अस्पतालों में जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। अस्पताल घायलों से भरे हैं, स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है, कई अस्पताल खाली करा लिए गए हैं, मरीजों का इलाज अस्थायी टेंटों में हो रहा है। लेकिन बड़ी परेशानी उन महिलाओं की भी है जो कि गर्भवती हैं और उन्हें बाहर ही प्रसव से गुजरना पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव नेपाल में है। काठमांडू के एक बड़े सरकारी अस्पताल परोपकार प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल के प्रशासक अमरनाथ से उन्होंने इसी सिलसिले में खास बात की।
इस वक्त हम काठमांडू शहर के परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल के अंदर है जो थापा थली में स्थित है और हमारे साथ अमरनाथ अमात्य जी हैं जो हॉस्पिटल के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अमरनाथ जी बताएं कि 25 तारीख को जब भूकंप आया तो यहाँ पर क्या मंजर था? मैंने अभी देखा ये सामने पूरा अस्पताल, 3 बड़ी बिल्डिंगें 4-4 मंजिला खाली करा दी गई हैं, एकदम उजाड़ पड़ी हुई हैं और नीचे एक टेंट लगा हुआ है। तो उस दिन क्या हुआ था?
देखिए उस दिन क्या हुआ था, इस हॉस्पिटल में टोटल 415 बेड का हॉस्पिटल है और ये सामने के बिल्डिंग है उसमें 270 बेड था। उस दिन करीब 11:56 में जो अर्थक्वेक हुआ ना, उस समय में इस हॉस्पिटल में टोटल 415 में टोटल 300 पेशेंट शायद होगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ इसका ऑक्यूपेंसी 100% है यहाँ पर। इसलिए हमारा अनुमान है उस टाइम में कम से कम 300 पेशेंट एडमिट हुआ होगा। अब उस समय जब अर्थक्वेक हुआ ना, जो अनकल ड्यूटी था वो लोग क्या किया, उस बिल्डिंग का आप भीतर जाएंगे तो वहाँ कुछ यूनिट वार्ड का वॉल क्रैक हुआ है और विंडोज सब का
शीशे निकले हुए दिख रहे हैं मुझे, पर्दे लटके हुए हैं बाहर आ गए।
इसीलिए वो लोग फिर उस दिन क्या हुआ था, पानी भी पड़ रहा था
जी, बारिश भी हो रही थी,
इसीलिए टेंट का व्यवस्था किए और सब पेशेंट को हम लोग टेंट में रखा। कितना पेशेंट तो टेंट में डिलीवरी भी हुआ। हाँ
जी, तो कैसे मैनेज किया, कितने लोग थे यहाँ पर और आसपास चारों तरफ तो बिल्डिंगें गिर रही थी, इमारतें ढही हुई दिख रही हैं।
इस हॉस्पिटल में देखिए 700 स्टाफ है, लेकिन एक शिफ्ट में कम से कम भी 175 स्टाफ होता है एक शिफ्ट में कम से कम, इसीलिए स्टाफ का कमी नहीं हुआ। अब क्या एक ही बार जहाँ अर्थक्वेक हुआ अब सबका हड़बड़ी हुआ एक जगह जब
अमरनाथ जी ये बताएं कि जब से ये हादसा हुआ 25 अप्रैल को उसके बाद से आपने बताया था मुझे अभी 300 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर जन्म ले चुके हैं, 70% हॉस्पिटल का पूरा एकदम बेकार हो चुका है जहाँ पर बच्चों का जन्म होता है, बाहर टेंटों में करके आप काम चला रहे हैं, कैसे कब तक रहेगा ये, क्या लगता है मदद कब आएगी, कब चीजें बेहतर होंगी?
अब मदद कब आएगा उसे तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस जगह दो ठो नया बिल्डिंग है लेकिन हैंड ओवर नहीं हुआ है, कंट्रैक्टर अभी तक हैंड ओवर नहीं किया था, इसलिए लास्ट फ्राइडे हम लोग गए और उससे बात किए तो वो लोग क्या, ठीक है अभी से वो उस घर में आप लोग सामान रख सकते हैं, पेशेंट रख सकते हैं, वो लोग बोला तो हम लोग प्लानिंग क्या है कमिंग संडे।
नेपाल के काठमांडू के एक अस्पताल का हाल, वहां पर मौजूद थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
और अब कार्यक्रम में अखबारों के पन्ने पलटते हैं, प्रभात पांडे मौजूद है। प्रभात, क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान के अखबार?
जी मोहनलाल, इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही कथित तनातनी को अपनी हेडलाइन बनाया है। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को फाइल ना भेजें, इसी पर नजीब जंग ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री का ये आदेश वापस लिया जाए। इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर जो है वो प्रमुखता से छपी है। हिंदुस्तान टाइम्स में भी यही खबर लीड बनी हुई है। साथ ही हिंदुस्तान टाइम्स में मोगा में कथित छेड़छाड़ की शिकार हुई किशोरी के अंतिम संस्कार और उसके परिवार के हरजाना कबूल करने को भी प्रमुखता दी है, और साथ ही आम आदमी पार्टी की मोहल्ला सभाओं में नाम मात्र की भीड़ जुटने को भी उन्होंने पहले पन्ने में जगह दी है। हिंदी पेपर अमर उजाला ने बॉक्सिंग के मैच ऑफ द सेंचुरी कहे जाने वाले मेवेदर और पैकियाओ के मुकाबले को लीड बनाया है। इस मुकाबले को मेवेदर ने जीता। अखबार ने उनकी इनामी राशि को बड़ा हाईलाइट किया है और अखबार के मुताबिक मेवेदर को 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनाम मिला है।
वैसे प्रभात, जो भी कल ये लोग मैच देख रहे थे उनकी उनकी नजर इस पे थी कि आखिरकार कितना पैसा है इस मैच में, और बहुप्रतीक्षित मैच था ये।
जी जी, और कई लोग क्रिकेट की इनामी राशि से कंपेयर कर रहे थे और क्रिकेट तो उसकी तुलना में फिर तो इस तरह की बातें भी हो रही थी। साथ ही इस अखबार में कश्मीर में घर वापसी को लेकर केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने जो प्रदर्शन किया उसे भी जगह मिली है। दैनिक भास्कर में भी मुक्केबाजी के महामुकाबले की खबर को लीड बनाया है, और वहीं पहले पन्ने पर एक छोटे से बॉक्स में भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की सगाई की खबर भी छपी है। रोहित ने अपनी दोस्त रितिका सचदेव से सगाई की है। नई दुनिया में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान कंगना रनौत और लालकृष्ण आडवाणी की साथ में मुस्कुराते हुए वाली तस्वीर को बिल्कुल छापा गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं वुसत उल्लाह खां की डायरी।
आपको शायद याद हो कि 10 वर्ष पहले 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कैसा भयानक भूकंप आया था जिसमें लगभग 90,000 लोग मारे गए और बीसियों गांव मिट गए। मैं जब तबाही के बाद बालाकोट पहुंचा तो देखा पूरा शहर ईंट पत्थर का ढेर है। हर परिवार में इतने लोग मरे कि जिंदा रहने वाले अपना रोना ही भूल गए। लोग कुदालों और हाथों की मदद से दबे हुए जख्मी और लाशें निकालने में लगे हुए थे कि एक वैगन आई जिस पे भोंपू फिट था। इस वैगन में बहुत से सफेद कपड़ों और रंगीन पगड़ियों वाले लोग सवार थे। उनमें से एक मौलाना साहब वैगन की छत पे खड़े होकर कहने लगे, ए मुसलमानों, ये भूकंप तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है, अपने रब से गिड़गिड़ा के माफी मांगो, दाढ़ी मुंडवाना छोड़ दो, बेहयाई के काम बंद कर दो, अपनी औरतों को बेपर्दा करने से बाज आ जाओ, वरना इससे भी बड़ा अजाब आएगा। कुछ जिंदा लाशों ने इन मौलाना साहब की तरफ पथराई आंखों से देखा और फिर अपने प्यारों की तलाश में जुट गए। इस पवित्र वैगन में से कोई भी मुसीबत के मारों की मदद के लिए नहीं उतरा, और फिर वो वैगन दूसरे गांव के लोगों को डराने के लिए धुआं छोड़ती हुई आगे बढ़ गई। इसी तरह जब अमेरिका के पूर्वी तट पे अक्टूबर 2012 में सैंडी नामक साइक्लोन से तबाही मची तो पाकिस्तान में कई धार्मिक नेताओं ने बयान दिया कि अमरीका ने पूरे विश्व में जो बदमाशी फैला रखी है ये तबाही उसी का नतीजा है। मुझे वो तस्वीर भी नहीं भूलेगी जब 2010 में आने वाली बाढ़ में 20% पाकिस्तान डूब गया, और एक जगह एक टीवी चैनल की रिपोर्टर बारिश में कपकपाते बच्चे के मुंह में माइक्रोफोन ठोंसते हुए पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, और बच्चा कह रहा था मुझे कपड़े दे दो। रिपोर्टर ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, बच्चा कह रहा था बाजी मुझे सर्दी लग रही है। प्लीज बुरा ना मानिएगा VHP की प्रचारक साध्वी प्राची की इस बात का कि भूकंप का कारण राहुल गांधी की काठमांडू यात्रा थी, या लोकसभा के मेंबर साक्षी महाराज की बात का कि राहुल बीफ खा के पाक साफ हुए बगैर जहां भी जाएंगे मुसीबत ही लाएंगे, या फिर वेबसाइट इंडिया फैक्ट्स के एडिटर संदीप बालाकृष्णा के इस ट्विटर का कि नेपाल का भूकंप ईसाई मिशनरियों की तरफ से धर्म बदलवाने की कोशिशों का नतीजा है, और बुरा ना मानिएगा उस जोशीले टीवी चैनल रिपोर्टर की बात का जो भूकंप के बाद निढाल नेपाली परिवार से पूछ रहा है इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं। माफ कर दें इन सब प्रोफेशनल्स को, क्योंकि ये ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। ओछे के हाथ में तीतर, बाहर रखूं के भीतर।
BBC संवाददाता वसतुल्लाह खा की डायरी। ब्रिटेन के चुनावों में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि अगर उनकी कंजर्वेटिव पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के बने रहने पर जनमत संग्रह होगा। अगर वो सत्ता में बहुमत से नहीं आते हैं तो वो सरकार की कमान नहीं संभालेंगे, क्योंकि वो जनमत संग्रह के वादे पर खरे नहीं उतर पाएंगे। ब्रिटेन में मौजूदा कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट गठबंधन की सरकार के बाद एक बार फिर से साझा सरकार के आसार नजर आते हैं। क्या परिस्थितियां हैं, सुनिए अमरीश द्विवेदी की रिपोर्ट।
Take home pay going up with the Conservatives, or take home pay going down because they put up your taxes with Labour.
No government led by me as Prime Minister will cut the tax credits that working people rely on.
Sorry, we simply can't accept countless millions.
David Cameron, Ed Miliband और Nigel Farage ब्रिटेन की 56वीं संसद चुनने के लिए हो रहे चुनाव के ये मुख्य खिलाड़ी हैं। ब्रिटेन में 1922 से लेबर या कंजर्वेटिव पार्टी की ही सरकार रही है। हालांकि भारत की ही तरह यहां भी मुख्य 2 पार्टियों को छोड़कर लिबरल डेमोक्रेट, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, ग्रीन पार्टी और SNP जैसे कई दल चुनाव में किस्मत आजमाते रहे हैं। पिछले चुनाव में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स ने मिलकर सरकार बनाई थी, और इस बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई भी पार्टी अपने दम पर 326 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। तो क्या ब्रिटेन पूरी तरह से गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश करता जा रहा है? लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में प्रोफेसर गुरहरपाल सिंह कहते हैं,
People are divided because the voter choice has become much more plural.
लोग इसलिए बंटे हैं क्योंकि मतदाता के सामने कई विकल्प हैं। ब्रिटेन में देशव्यापी प्रभाव वाली ऐसी पार्टी व्यवस्था भी नहीं रह गई है जो मतदाताओं को जोड़ सके। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 30 सालों में लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी का जनाधार लगातार घटा है, और इसका फायदा क्षेत्रीय और व्यवस्था विरोधी पार्टियों को हुआ है।
30 years have been losing votes. They have been losing votes to regional parties and anti-establishment parties.
अगर भारत से तुलना करें तो वहां चली गठबंधन राजनीति और ब्रिटेन की गठबंधन राजनीति में कई बुनियादी फर्क हैं, जैसे कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की केंद्र की गठबंधन सरकारों में अहम भूमिका रही है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। सुवास में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले सुबीर सिन्हा कहते हैं,
ब्रिटेन के कोलिशन पॉलिटिक में जो है गठबंधन बनती है पोस्ट पोल, यहाँ प्री पोल अलायंस चलती नहीं है। फिलहाल आप देख लीजिए SNP और लेबर पार्टी में जो एक खेल टाइप का चल रहा है कि हम आपके साथ बनाएंगे सरकार या ना बनाएंगे। लोग जाते नहीं है इलेक्ट्रेट के पास ये कहते हुए कि हम गठबंधन बनाएंगे, जाते हैं इलेक्ट्रेट के पास ये कहते हुए कि हमको तो बहुमत आएगा। हमारे यहाँ जो है पिछले 20-25 साल से आप एक गठबंधन ही बना करके जाते हैं इलेक्ट्रेट के सामने, तो उसका एक लॉजिक बन जाता है।
BBC के पोल ट्रैकर के हिसाब से भी दोनों प्रमुख पार्टियों में 19-20 का ही फर्क है, लेकिन दोनों ही 33-34% की रेटिंग हासिल कर पा रही हैं। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका पर सबकी निगाहें हैं। प्रोफेसर गुरहरपाल सिंह,
Devolution of power to Wales, Northern Ireland and Scotland.
90 के दशक में वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पक्ष में शक्ति के विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई और समय के साथ ये मजबूत होती गई। फिर उपराष्ट्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिसने राजनीतिक परिदृश्य को विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने क्षेत्रीय दल हैं और UKIP जैसी व्यवस्था विरोधी पार्टी भी है जो इमिग्रेशन का विरोध करती है, लेकिन इसने बहुदलीय व्यवस्था तो बना ही दी है।
And that has created more or less a multi-party competition.
जानकारों का कहना है कि चुनाव के आखिरी हफ्ते में पार्टियां जीतोड़ मेहनत कर अपनी साख बढ़ाने की कोशिश करेंगी। यहां तक कि मंदिरों और गुरुद्वारों के चक्कर भी लगाए जा रहे हैं। अब तक के अनुमानों से तो त्रिशंकु संसद चुने जाने के आसार ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती तक ये महज अनुमान ही है। अमरेश द्विवेदी, बीबीसी लंदन।
ब्रिटानी चुनावों का हाल और अब बात खेल की खबरों की।
आईपीएल 8 में कल भी दो मुकाबले खेले गए, जहां पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को आसानी से 23 रन से मात दी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में केवल 3 विकेट खोकर 172 रनों जैसा बड़ा स्कोर बनाया। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज स्लेंडल सिमंस ने 56 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 71 रन बनाए, जबकि उनके जोड़ीदार विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने भी केवल 36 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 59 रनों की पारी खेली। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 111 रन भी जोड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए। पंजाब के तेज गेंदबाज अनुरीत सिंह ने 30 रन देकर 1 और मिचेल जॉनसन ने 41 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। जीत के लिए 173 रनों की तलाश में उतरी पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 149 रन ही बना सकी। पंजाब के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने 39 रन बनाए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग की नाकामी का सिलसिला जारी रहा। वो केवल 2 रन बनाकर मलिंगा का शिकार बने। डेविड विलर ने 43 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान जॉर्ज बेली ने रनआउट होने से पहले 21 रन बनाए। मुंबई के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने 31 रन देकर 2 और हरभजन सिंह ने 27 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। आईपीएल में कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 14 रन से मात दी। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के नाबाद 91 और करुण नायर के 61 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 189 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी। हालांकि कप्तान जेपी डुमिनी ने 56 रन बनाए। राजस्थान के धवल कुलकर्णी और स्टुअर्ट बिन्नी ने 2-2 विकेट हासिल किए। उधर हॉकी के मैदान में भुवनेश्वर में जापान के खिलाफ खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की हॉकी सीरीज में भारत को जापान ने पहले मुकाबले में 1-1 से बराबरी पर रोक दिया। उल्लेखनीय है कि जापान को दुनिया में 16वीं वरीयता हासिल है, जबकि भारत को 9वीं। जापान ने 20वें मिनट में पहला गोल कर भारत को हक्का बक्का कर दिया। इसके बाद 44वें मिनट में भारत के वी रघुनाथ ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को राहत की सांस दिलाई। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल खेला जाएगा।
और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात जिन पर रहेगी हमारी नजर।
पंजाब के मोगा में कांग्रेस ने आज बंद का ऐलान किया है। कथित छेड़छाड़ का शिकार हुई किशोरी की मौत के विरोध में कांग्रेस ने ये बंद बुलाया है और इसके लिए प्रदेश की जो बादल सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ झारखंड बंद बुलाया गया है, जिसमें झारखंड विकास मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड समेत कई अन्य दल शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर भी हमारी नज़र होगी। अमेरिका के बाल्टीमोर समेत अमेरिका के दूसरे शहरों में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एक काले युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद कई शहरों में दंगे भड़क गए थे। यहाँ के घटनाक्रम पर भी हमारी नज़र होगी। साथ ही सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं की 20 टुकड़ियों के यमन के अदन शहर पहुंचने के बाद वहां पर भी घटनाक्रम तेजी से बदलने की आशंका है, इस पर भी हमारी नजर होगी।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, एक बार मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं प्रभात पांडे से।
नाइजीरिया में सेना ने दावा किया कि पिछले सप्ताह से अब तक उसने बोको हराम के चंगुल से 700 बंधकों को छुड़ा लिया है। छुड़ाई गई महिलाओं के मुताबिक उन्हें छुड़ाने की कार्रवाई के दौरान जिहादियों ने कई बंधकों की हत्या भी कर दी। नेपाल में राहत कार्यों में मदद के लिए अमरीकी सेना के 4 हेलीकॉप्टर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों ने भूकंप के बाद नेपाल में महामारियों के फैलने की आशंका जताई है। भारत के नागालैंड राज्य में चरमपंथियों ने सेना के 8 जवानों को मार डाला है। मारे गए सैनिकों में 7 असम राइफल के जवान और 1 प्रांतीय सेना का जवान था। पंजाब के मोगा में कथित छेड़छाड़ की शिकार हुई किशोरी की मौत के बाद कांग्रेस ने आज मोगा बंद का ऐलान किया है। इटली के तटरक्षक अधिकारियों का कहना है कि भूमध्य सागर पार कर यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे करीब 6,000 अवैध प्रवासियों को जिंदा बचा लिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। एक घंटे बाद फिर से मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को दीपक जसरोटिया के साथ विदा दें। नमस्कार।